नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति भी व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने आपसी संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
I am confident that this comprehensive agreement
हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
of our shared future.
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों की रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्ट्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई हैं, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोक भवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वालों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय और शंकर घोष प्रमुख हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।